الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کل بروز قیامت میرے نزدیک ترین شخص وہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر بکثرت درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے درس بخاری شریف میں آج پھر حاضر ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتاب المناقب صحیح بخاری شریف سے ابتدا میں ہی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک آیہ مبارکہ ذکر فرمائی اور پھر اس کے بعد چند ایک احادیث مبارکہ کو لے کر آئے ہیں جن کا تعلق نسب سے ہے، نسب پر فخر کرنا۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مناقب یہ منقبت کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں تعریف یا خوبیاں یا خصوصیات۔ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات کا ذکر بھی فرمائیں گے اور اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کے مناقب کا ذکر بھی ہوگا اور اہل بیت اطہار کے مناقب کا ذکر بھی اسی میں کیا جائے گا۔ جو آیہ مبارکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی لے کر آئے ہیں، اس میں تخلیق انسانی کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ ترجمہ کنز العرفان، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں جو لوگوں سے خطاب فرما کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ مرد سے مراد حضرت ابو البشر آدم علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام ہے، اور عورت سے مراد حضرت اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور جب نسب کے اس انتہائی درجہ پر جا کر تم سب کے سب مل جاتے ہو تو نسب میں ایک دوسرے پر فخر اور بڑائی کا اظہار کرنے کی وجہ کوئی نہیں بنتی۔ انسان کوئی بھی ہو، بالآخر انتہائی درجہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان سے جا کر مل جائے گا، اور پھر حضرت اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان سے جا کر مل جائے گا۔ تو پھر فخر کی وجہ کیا ہے کہ نسب کے اوپر ایک دوسرے پر فخر کیا جائے اور بڑائی کا اظہار کیا جائے؟ بلکہ فرمایا، تم سب آپس میں برابر ہو اور ایک جد اعلیٰ کی اولاد ہو، اس لیے نسب کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر کا جو اظہار ہے وہ نہ کیا کرو، گویا کہ منع فرما دیا گیا۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے تمہیں مختلف قومیں اور قبیلے خاندان بنایا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو، یہ کس خاندان سے ہیں، کس قوم سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھتے ہیں۔ اور ایک شخص دوسرے شخص کا نسب جانے اور اس کے بارے میں اسے پہچان رکھے، اور اسی طرح کوئی اپنے باپ دادا کے سوا دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہ کرے، نہ یہ کہ اپنے نسب پر فخر کرنے لگ جائے और दूसरों की तहकीर करना शुरू कर दे, अपने आप को आला जाने और दूसरे को जलील करे, उसकी तहकीर करे, उसे बुरा समझे और उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करे। मदनी चैनल के नाज़रीन, दुनिया में उमूर तो और भी बहुत सारे हैं जिनकी वजह से आपस के अंदर फख्र किया जाता है और लोग तकब्बुर करने लगते हैं। माल है, माल ज्यादा है तो फख्र करने लगते हैं, और इसी तरह हुसन है, इसी तरह बुजुर्गी है। ये सब उमूर वो हैं जिनकी वजह से आपस में एक दूसरे पर फख्र किया जाता है, लेकिन सिर्फ यहां पर नसब पर फख्र करने को ही बतौर खास क्यों बयान किया गया है? यारीन हदीस ने इसका जवाब दिया और हमारे मुफस्सिरीन किराम ने भी इस आया मुबारका के तहत जो तफसीरें लिखी हैं उसके अंदर उन्होंने इसकी वजाहत की कि याद रहे, दुनिया में वो उमूर अगरचे कसीर हैं कि जिनकी बिना पर आपस में एक दूसरे के ऊपर फख्र और तकब्बुर किया जाता है, बड़ाई का इजहार किया जाता है, लेकिन नसब इनमें सबसे बड़ा अमर है, क्योंकि माल और हुसन और बुजुर्गी की वजह से किया जाने वाला जो तकब्बुर है यह हमेशा नहीं रहता, माल हमेशा नहीं रहता, हुसन हमेशा नहीं रहता। आज हुसन है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है हुसन मानंद पड़ता चला जाता है और चेहरों पर झुरियां पड़ जाती हैं। कहा कि जो माल है, हुसन है, बुजुर्गी है, इनकी वजह से किया जाने वाला जो तकब्बुर है यह हमेशा नहीं रहता, बल्कि इन चीजों के खत्म होने पर तकब्बुर भी खत्म होता हुआ नजर आता है। जबकि नसब की वजह से किया जाने वाला जो तकब्बुर है वो खत्म नहीं होता जब तक बंदा जिंदा है। ये तकब्बुर करते रहते हैं, बड़ाई का इजहार करते हैं, एक दूसरे पर फख्र करते हैं, इसीलिए बतौर खास इसे जिक्र किया गया क्योंकि एक बड़ा अमर था। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाह अल-वाली आप इरशाद फरमाते हैं, जिस आदमी का नसब अच्छा हो वो दूसरे नसब वालों को हकीर जानता है, और बाद लोग हसवो नसब के जरिए इस तरह तकब्बुर करते हैं कि गोया दूसरे लोग इनकी मिल्कियत में हैं और इनके गुलाम हैं। जी हां, मदे चैनल के नाज़रीन, इस तरह तकब्बुर करने लगते हैं जैसे सामने वाला इसकी मिल्कियत में है, इसकी गुलामी में है, इसने खरीद रखा है। वो इनसे मेल जोल करने, इनके पास बैठने से नफरत का इजहार करने लगते हैं, और इसका नतीजा इनकी जुबान पर यूं आता है कि तकब्बुर करते हुए दूसरों को घटिया किस्म के अल्फाज से पुकारते हुए नजर आते हैं, और फिर ये कहते तुम कौन हो, तुम्हारा बाप कौन है, मैं फुला का बेटा और मैं फुला बिन फुला हूं, तुम्हें मुझसे बात करने या मेरी तरफ देखने का क्या हक है, तू मुझ जैसे लोगों से बात करता है और मुझसे इस किस्म की गुफ्तगू करता है, वगैरह वगैरह, इस तरह के अल्फाज तक कहते हुए नजर। गाली गलोच तो फिर तकिया कलाम बन जाती। इसी सिलसिले में एक हदीस मुबारक समाअत फरमाइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में दो आदमियों ने एक दूसरे के ऊपर फख्र का इजहार किया। एक ने कहा कि जी मैं फुला का बेटा फुला हूं, तुम कौन हो, तुम्हारी तो मां ही नहीं है। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत मूसा अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम के सामने दो आदमियों ने एक दूसरे पर फख्र किया था। इनमें से एक ने कहा था मैं फुला का बेटा फुला हूं, इस तरह वो नौ पुश्तें शुमार कर गया और कहने लगा तेरी तो मां ही नहीं है, फुला का बेटा फुला, इस तरह अपने अबाऊ अजदाद में नौ पुश्तें उसने शुमार की, और साथ में यह भी कहा तेरी तो मां ही नहीं। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे कलीम हजरत मूसा अला नबीना व अली सलातु वसलाम की तरफ वही भेजी और फरमाया कि जिसने फखर का तकब्बुर का इजहार किया है इससे आप फरमा दें कि वो नौ की नौ पुश्तें जहन्नुम में जाएंगी। अल्लाहु अकबर, वो नौ की नौ पुश्तें जिनके सबब से ये बड़ाई का इजहार कर रहा था, फखर और तकब्बुर का इजहार कर रहा था, वो नौ की नौ पुश्तें जहन्नुम में जाएंगी और तुम इनके साथ दसवें होगे। और नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अबाओ अजदाद पर फखर करने को छोड़ने का हुक्म इरशाद फरमाया। एक हदीस मुबारक में आपने इरशाद फरमाया कि लोगों को अपने अबाओ अजदाद पर फख्र करना छोड़ देना चाहिए, और उसकी वजह क्या है? वो जहन्नम में कोयला बन गए या वो अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक उन कीड़ों से भी ज्यादा जलील हैं जो अपने नाक से गंदगी को धकेलते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें इस बीमारी से महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की इसी आयत मुबारक जो सूरह हुजुरात में है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किताबुल मनाकिब के शुरू में ही इसे जिक्र फरमाया। इसके अगले जुज के अंदर ये बात अल्लाह तबारक व ताला ने बयान फरमा दी कि मेरी बारगाह में मुअज्जज कौन है, मुकर्रम कौन है, और फरमाया इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मुकर्रम होने के लिए जरूरी नहीं है कि बंदे के पास हुस्न व जमाल हो, बंदे के पास कमाल हो और बंदे के पास उसका माल हो, हसब नसब हो, ये जरूरी नहीं है, बल्कि इरशाद फरमाया बेशक अल्लाह के यहां तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में ज्यादा परहेजगार है। जो इंसान के लिए वस्फ शराफत और फजीलत का सबब है उसे बयान फरमाया, और वो वस्फ कि जिससे अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में इज्जत हासिल हो जाती है उसे बयान फरमाया, और वो परहेजगारी है, वो तकवा है, और बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया तुम्हें जानने वाला है और तुम्हारे बातिन से भी बाखबर है। इस आयत मुबारका के जुज का अगर शान नुजूल आप देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम मदीना मुनव्वरा के एक बाजार में तशरीफ ले गए। वहां आपने एक मंजर मुलाहजा किया, एक हबशी गुलाम ये कह रहा था जो मुझे खरीदे उसके साथ मेरी ये शर्त है कि मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में 5 नमाजें अदा करने से मना ना करे। बहुत प्यारी शर्त लगा रहा था। उस गुलाम को एक शख्स ने खरीद लिया, फिर वो गुलाम बीमार हो गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए तशरीफ लाए। गुलाम है फिर भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रब के महबूब हैं, नबियों के नबी हैं, इमामुल अंबिया हैं, आखिरी नबी बनकर इस दुनिया में जलवा गर हुए, उसकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए। फिर हुआ ये कि उस गुलाम की वफात हो गई और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तदफीन में भी तशरीफ लाए। इसके बारे में लोगों ने कुछ कहा और किसी ने कुछ कहा, तो इस पर ये आयत मुबारक नाजिल हुई, इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जो ज्यादा इज्जत वाला, शरफ वाला और फजीलत वाला है ये वो शख्स है कि जो तकवा और परहेजगारी ज्यादा रखने वाला है। इज्जत और फजीलत का मदार तकवा और परहेजगारी को बयान फरमा दिया गया। हजरत मौलाना मुस्लिमीन मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाह वजुल करीम से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब कयामत का दिन होगा तो बंदों को अल्लाह तबारक व ताला के सामने खड़ा किया जाएगा इस हाल में होंगे कि वो गैर मख्तून होंगे और उनकी जो रंगत है वो स्याह होगी। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाएगा ऐ मेरे बंदो मैंने तुम्हें हुक्म दिया और तूने मेरे हुक्म को जाया कर दिया और तुमने अपने जो नसब हैं उनको बुलंद किया और इन्हीं के सबब से एक दूसरे के ऊपर तुम फख्र करते रहे, बड़ाई का इजहार करते रहे। आज के दिन मैं तुम्हारे नसबों को हकीर और जलील करार दे रहा हूं, मैं ही गालिब हुक्मरान हूं। कहां हैं मुत्तकी लोग? जो अहले तकवा है उनको निदा की जाएगी। बेशक अल्लाह तबारक व ताला के यहां तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में ज्यादा परहेजगार है, गुनाहों से बचने वाला, अल्लाह से डरने वाला, अपने दामन को गुनाहों की स्याही के नुक्तों से महफूज करने वाला। मुत्तकी परहेजगार शख्स अल्लाह के यहां सबसे ज्यादा मुअज्जज है, मुकर्रम है, इज्जत शर्फ और फजीलत वाला है। और फरमाया वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल्लरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। इमाम बुखारी फरमाते हैं वमा युन्हा अन दावल जाहिलियति अश्शुउब अन नसबुल बईद वल कबाइल दून ज़ालिक। और अल्लाह तबारक व ताला का सूरह निसा में ये जो इरशाद है और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो। वत्तकुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल्अरहाम, और रिश्तों को तोड़ने से बचो। ये कुरान में हुक्म दिया गया, बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। और फरमाया इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने, और जाहिलियत की तरह बाप दादाओं पर फख्र करना ये मना है। इसका बयान जो इसमें शुऊब का जिक्र है, मैं शाबुन की जमा है जिससे ऊपर का खानदान मुराद होता है। कुरान की आयत में फरमाया शुऊबन व कबाइल लितआरफू, और कबाइल से इससे उतर कर नीचे का यानी इसकी शाख मुराद होती है। शुऊबन से मुराद ये ऊपर का खानदान है यानी उसूल है, और फिर जो उसकी शाखें हैं उनको कबाइल कहा जाता है। आयत के इस हिस्से में इरशाद फरमाया गया कि अल्लाह तबारक व ताला से डरो जिसके नाम से एक दूसरे से मांगते हो, यानी ये कहते हो कि अल्लाह के वास्ते मुझे दो, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करो, तो वो लोग इसको देते हैं। और ये भी कह दिया गया कि रिश्तेदारी तोड़ने के मामले में रिश्तेदारों के साथ जो कता ताल्लुक किया जाता है, रिश्तेदारियां तोड़ दी जाती हैं और सिला रहमी नहीं की जाती, हालांकि सिला रहमी का हुक्म तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया, फरमाया इसके बारे में भी तोड़ने से मना किया गया। कुरान मजीद में और अहादीस मुबारका में रिश्तेदारी तोड़ने की शदीद मुज़म्मत को बयान किया गया। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वल्लज़ीन यनक़ुदून अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار। और दूसरी आयत मुबारक जो सूरह बकरा में है उसके आखिर में फरमाया اولئك هم الخاسرون। ये तीन मज़मूम और साफ बयान करने के बाद ये जिक्र किया गया اولئك هم الخاسرون, और तर्जुमा इनका ये बनता है और वो जो अल्लाह का अहद उसे पुख्ता करने के बाद तोड़ देते हैं। रब से हम सब ने वादा किया है कि हम उसके अहकाम पर अमल करें, अल्लाह से किए हुए वादों को तोड़ देते हैं, और जिसे जोड़ने का हुक्म अल्लाह ने फरमाया है या दिया है उसे काटते हैं। وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَل, जो अल्लाह ने हुक्म दिया कि करीबी रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो, ये जो सिला रहमी का हुक्म है इसे तोड़ देते हैं, काट देते हैं, अता ताल्लुक करते हैं। वयुफ्सिदून फिल अर्द, और जमीन के अंदर फसाद फैलाते हैं। फरमाया उनके लिए लानत ही है और उनके लिए बुरा घर है। और जो सूरह बकरा की आयत है उसमें फरमाया उलाइका हुमुल खासिरून, तीन ये मजमूम और साफ जिक्र किए, फरमाया यही लोग हैं जो खसारा पाने वाले हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी औफा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया जिस कौम में रिश्तेदारी तोड़ने वाला होता है उस पर रहमत नहीं उतरती। अल्लाह की हम रहमत चाहते हैं तो रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करने। दो चीजें इंसान को मतलूब है, दराजी उम्र भी हो जाए और साथ में माल भी हो जाए। माल मिल जाए, दराजी उम्र नहीं है तो फिर माल किस फायदे का, किस काम का? उम्र लंबी है, माल नहीं है तो फिर भी इंसान परेशान हाल ही जिंदगी बसर करता है, गुर्बत में जिंदगी गुजर जाती। दो चीजों की जरूरत, फरमाया जिसको ये पसंद हो कि उसकी उम्र लंबी हो जाए और उसके माल में कुशादगी हो जाए, उसे चाहिए कि रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी, छोटी छोटी बातों के ऊपर रिश्ते तोड़ देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। कुरान में इससे मना किया गया, किसी ने घर में खाना नहीं भेजा ईद शबरात के ऊपर, कोई खत्म दुरूद करके कुछ न्याज नहीं भेजी, ये सब छोटी छोटी बातें, इनके ऊपर रिश्तेदारियां खत्म कर देना। शादी ब्याह में सब फैमिली वालों को नहीं बुलाया तब भी रिश्तेदारियां तोड़ देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। कुरान और हदीस इस बात से मना कर रहे हैं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए उस दीन के अंदर तो ये है कि जो तुम्हें महरूम करता है तू उसे अता किया कर, जो तुझ पर जुल्म करता है तू माफ करने को इख्तियार कर, और जो तुझसे ताल्लुक को तोड़ लेता है तू आगे बढ़ के उससे ताल्लुक को जोड़ दिया कर। तो इस तरह हमें अमल करना चाहिए जो दीन इस्लाम कहता है, इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक जो दीन है वो इस्लाम, और जो दीन इस्लाम मुस्तफा जाने रहमत लेकर आए उसकी शान ये है कि हमें यह अहकाम दिए जा रहे ताकि हमारी दुनिया कामयाब हो जाए और आखिरत में भी हम सुरखुरू हो जाए। आइए इस आया मुबारक के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ले जो पहली हदीस मुबारक लेकर आए, ये हदीस नंबर है 3489, वो हदीस मुबारक भी समाप्त फरमाइए। امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں خالد بن یزید الکاہلی انہوں نے حدیث بیان کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو بکر نے حدیث بیان کی اور وہ کہتے ہیں کہ ابو حسین نے ہمیں یہ حدیث بیان کی اور وہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ آگے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا قَالَ الشُّعُوبُ الْقَبَائِلُ الْعِظَامُ وَالْقَبَائِلُ الْبُطُونُ شعوب اور قبائل کا معنی کیا ہے پیچھے بھی بیان کیا گیا ہے اس معنی کو اس حدیث مبارک میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا اور ہم نے تم کو قومیں یعنی جو اللہ فرما رہا ہے قرآن کی آیت میں اور ہم نے تم کو قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرو اس میں فرمایا شعوب کا لفظ ہے شعوب سے مراد بڑے قبیلے یعنی اصول اوپر والے قبیلے اور قبائل کا جو لفظ ہے قبائل یہ قبائل کا جو لفظ ہے اس سے مراد قبیلے کی شاخیں ہیں یعنی جو بڑے قبیلے ہیں ان کی شاخیں چھوٹے قبیلے مراد ہیں ان کی فروعات مراد ہیں اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو حدیث ذکر فرمائی اس میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من اکرم الناس سب سے زیادہ شریف کون ہے سب سے زیادہ مکرم معزز کون ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اتقاہم یعنی لوگوں میں جو سب سے زیادہ متقی ہے پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والا گناہوں سے دور رہنے والا اور رب ذوالجلال سے ڈر کر عمل کرنے والا اس کو راضی کرنے والا جو خوف خدا رکھنے والا متقی پرہیزگار آدمی ہے وہ لوگوں میں سب سے زیادہ معزز ہے تو صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کیا ہمارا سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں نہیں ہے اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیوسف نبی اللہ کہ اللہ کے نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام گویا حضور فرماتے سب سے زیادہ شریف تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بھی واضح کر دیا کہ تقوی اور پرہیزگاری جو اختیار کرنے والا شخص ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں معزز ہے تو مدنی چینل کے ناظرین نسب کے اوپر فخر کرنے سے منع کر دیا گیا کہ فخر کرنا چھوڑ دو اپنے آباؤ اجداد کے نسب پر فخر کر کے لوگوں کو برا مت جانو لوگوں کو حقیر مت جانو اپنی بڑائی کا اظہار مت کرو کہ یہ تکبر ہے اور کبریائی اللہ کی چادر ہے تکبر اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے تو جو بات اللہ کو پسند نہیں ہے ہمیں اس بات سے بچنا ہے اور دوسری بات کہ ہمیں قریبی رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ دار کوئی بھی ہو اچھے طریقے سے بات کیجئے ان کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھیے اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کیجئے محبت سے دھیمی آواز سے سمجھانے والے انداز سے اگر کوئی بات سمجھانے والی ہے ان کے ساتھ اس طرح پیش ہے کوئی ہمیں نہیں دیتا تو ہم آگے بڑھ کر اس کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہم اس کو عطا کریں وہ خود سمجھ جائے گا اور انسان کو جب سمجھانا ہوتا ہے تو انسان اپنے عمل کے ذریعے اس کے دل میں بات اتار دیتا ہے تو ان سب باتوں پر عمل کرنا چاہیے رب جاننے والا ہے وہ خوب جانتا ہے ہمارا ظاہر کیا ہے اور ہمارا باطن کیا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم
ایمان ہے